समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसके साथ ही आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम परिक्रमा के आज के अंक की। आज आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, यह समझौता अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says the deal will bring opportunities for farmers, entrepreneurs, students, women and innovators.
सरकार ने कहा है कि अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं है। सरकार का एकमात्र और विशेष ध्यान पर्वत श्रृंखला की रक्षा पर है।
National Commission for Women launches Shakti Scholars Young Research Fellowship on women-centric policy issues.
और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण कई उड़ानों और रेलगाड़ियों के संचालन में व्यवधान।
And now listeners, it's time for a segment Dateline India in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about National Commission for Women Shakti Scholars. And like we are saying, Akarshita, today we bring you a segment informing you about the opportunity that could shape not only your future, but the future of women's rights and gender equality in a country. The National Commission for Women, popularly known as the NCW, has launched an exciting and impactful initiative titled Shakti Scholars, NCW's Young Research Fellowship Program. And this program is specially designed for young, motivated students and researchers who want to contribute to policy making and social transformation through meaningful research.
It's me.
जो तेरे कद से इरादे तो ये फलक मगरूर
है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है सपनों
जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत की है। इसमें भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर शोध के लिए युवा छात्रों और शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस फेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम भागीदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक शोध को प्रोत्साहित करना है।
Yes, so Akarshita, let's talk about what these include. Well, women's safety and dignity, understanding how safe public and private spaces truly are. Gender-based violence, examining its causes, impact and prevention. Legal rights and access to justice, exploring gaps between law and reality. Cyber safety, addressing online harassment and digital threats. Health and nutrition, analyzing disparities in healthcare access. Economic empowerment and labor participation, studying women's role in India's workforce.
और ये महज अकादमिक विषय नहीं है, ये देश भर की लाखों महिलाओं के लिए रोजमर्रा की हकीकत है। क्योंकि हम देखते हैं अभिषेक, कितनी ज्यादा समस्याओं की सामना करना पड़ता है महिलाओं को रोड पे चलते वक्त, एक बस में ट्रैवल करते वक्त, बहुत ढेर सारी समस्याएं आती है। तो शक्ति स्कॉलर्स के माध्यम से NCW का उद्देश्य युवाओं को आलोचनात्मक सोच विकसित करना, गहन शोध करने और ऐसी सिफारिशें देने के लिए प्रोत्साहित करना है जो नीतियों और कानूनों को बदल सके और ऐसे बदलाव ला सके जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और कोई भी महिला जो एक वर्किंग वुमेन है वो इसके लिए आवेदन कर सकती है, वो अपनी समस्याओं के विषय पर शोध कर सकती है और उससे शायद बहुत अच्छा एक परिवर्तन आ सकता है।
एब्सोल्युटली। नाउ आल्सो आकर्षिता, लेट्स टॉक अबाउट आल्सो द एलिजिबिलिटी, बिकॉज दिस कुड बी योर चांस। So, listeners, the fellowship is open to Indian citizens aged between 21 and 30 years and with a minimum qualification of graduation from a recognized institution.
जी हाँ, और चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने के शोध अध्ययन के लिए 1,00,000 रुपए का शोध अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। तो चाहे आप विधि, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक नीति, मनोविज्ञान, लैंगिक अध्ययन, समाज कार्य या किसी भी संबंधित क्षेत्र के छात्र हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
Yes, and imagine your research contributing to safer digital spaces. Imagine your study helping improve access to justice. Imagine your work influencing policies that empower women economically, and that's the power of Shakti Scholars.
लेकिन याद रखें कि ऐसे अवसरों के लिए समय सीमा तय होती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 31 तारीख जो है वो आखिरी डेट है आपके अप्लाई करने की। इसलिए यदि आपके पास कोई शोध विचार है, महिलाओं के मुद्दों में गहरी रुचि है और बदलाव लाने का जुनून है तो अंतिम क्षण की प्रतीक्षा क्यों करें, आज ही अप्लाई करें।
Absolutely, listeners, if you know a young student, a budding researcher or someone who dreams of working in policy, law, social change, share this information with them, because when young minds research with purpose, societies move forward. For detailed guidelines and application procedures, visit the official platforms of the National Commission for Women.
और श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में कैसे प्रगति कर रहा है? इसका एकमात्र उत्तर है अनुसंधान और विकास। अनुसंधान का अर्थ है नए विचारों की खोज करना और विकास का अर्थ है उन विचारों को वास्तविकता में बदलना। ये दोनों मिलकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। और अभिषेक, अगर बात करें शोध की, अगर शोध ना हो तो शायद किसी भी क्षेत्र में प्रगति ना हो।
Absolutely. And take space research for example. Because of years of research, India's ISRO has sent satellites into space and even reached Mars at a very low cost. And isn't that amazing? This achievement has made every Indian proud. And now let's talk about agriculture. Due to research, farmers today use high quality seeds, modern tools and better farming methods. And as a result, food production is increased and farmers' lives have improved, isn't it?
जी हाँ, और स्वास्थ्य सेवा में भी अनुसंधान और विकास की बड़ी भूमिका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सस्ती दवाएं और टीके विकसित किए हैं। स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अनुसंधान ने अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद की है। और इतना ही नहीं, अनुसंधान और विकास रोजगार तथा नवाचार भी सृजित करता है। ये युवा प्रतिभाओं को रचनात्मक रूप से सोचने और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत को आर्थिक विकास में मदद मिलती है। और अभिषेक, हमने देखा योगा यूट्यूब पे और बहुत ही सारी जगहों पे कि स्टूडेंट्स जो हैं, क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के स्टूडेंट, वो जो है ड्रोन बना रहे हैं और ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें विकसित करने में मदद कर रहे हैं। वो ये सब एक पहचान है कि किस तरीके से एक नया भारत आगे बढ़ रहा है।
Absolutely, and the new India will not lag behind in anything. And most importantly, Agarshita R&D helps India become self-reliant. When we develop our own technology, we depend less on other countries and stand strong on the global stage. So, dear listeners, research and development is not just about laboratories and scientists. It is about progress, confidence, and a better future for India.
जी हाँ, और ये महज एक संगीत नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये चिंतन, प्रश्न, शोध और सुधार का आह्वान है। तो हम सभी से ये आह्वान करते हैं कि अगर आप इच्छुक हैं, शोध के इच्छुक हैं, अनुसंधान के इच्छुक हैं, तो आगे आइए और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Absolutely, Akarshita, we start off with a story from Delhi, and amid the growing concerns over the protection of the Aravalli hills, the government has reiterated its commitment to ensure that the hills remain green and protected. And Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav clarified that the government has no plans for urbanization in the Aravalli region, and that its sole and exclusive focus is on protecting the range. And speaking to a news agency in New Delhi, Mr. Yadav said that several cities including Phulera, Ajmer, Udaipur and Bundi are already located in the Aravallis, which have been inhabited by humans for centuries, and we have a report.
The Aravalli hills and mountain ranges extend across 37 districts in four states, covering a total geographical area of about 1,44,000 square kilometers. Of these areas, Rajasthan accounts for the largest share at 73.8%, followed by Gujarat with 16.9%, Haryana with 8.8%, and the National Capital Territory of Delhi at 0.42%. The minister said that the Supreme Court has defined the protected areas of the Aravallis and mining activities are not possible in nearly 90% of the area. Mr. Yadav also dismissed the claims that the government has relaxed the protection norms on the hills. According to the analysis, agriculture is the dominant land use category in the districts of the Aravalli range. Agricultural land constitutes 69% in Haryana, 58.1% in Rajasthan, and 52.6% in Gujarat. Overall, more than half of the total geographical area of the 37 districts falling within the Aravalli hills and ranges is cultivable land. In terms of conservation, areas under reserved forests and protected forests, protected areas, and eco-sensitive zones together account for about 18.6% in Rajasthan, 8.9% in Gujarat, and 0.5% in Haryana. In Delhi, a significant portion of about 20.8% falls under notified conservation. Thus, approximately 15% of the total geographical area of the 37 districts under the Aravalli mountain range is covered by various protective conservation measures. For Parikrama, Vidishu Jaiswal, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
भारत भूटान सीमा के निकट पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिला कालिमपोंग के परिंगटार में खोले दाई महोत्सव चल रहा है। ये महोत्सव धान की फसल के कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें कैंप लगाया जाता है और काफी संख्या में देश विदेश के पर्यटक आकर रहते हैं तथा सुंदर वादियों, लोक कला, संस्कृति और व्यंजनों का आनंद लेते हैं। विगत 5 वर्षों से इस परंपरागत महोत्सव को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है।
Yes, and...
भारत भूटान की सीमा पर अवस्थित कालिमपोंग जिले का यह परिंगटार गांव हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता व धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां विगत 5 वर्षों से बड़े स्तर पर परंपरागत खोले दाई महोत्सव का पालन किया जा रहा है। खोले का अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र में बहने वाली छोटी नदियां तथा दाई का अर्थ है बड़े भाई। यह पर्व परंपरा से धान की कटाई का पर्व है। हिमालय की पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेस बनाकर धान की खेती की जाती है। धान की कटाई के बाद नदी किनार में बने इन खाली टेरेसों में कैंप लगाकर यह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें संध्या को स्थानीय कलाकारों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला का प्रदर्शन, स्थानीय व्यंजनों का आनंद पर्यटक उठाते हैं। इस 5वें खोले दाई महोत्सव में 500 से अधिक विदेशी तथा सैकड़ों घरेलू पर्यटक उपस्थित हैं। यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता है। इसकी विशेषता यह है कि विगत 5 वर्षों से यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं अन्य बाहर नहीं जाना पड़ा है। इस महोत्सव ने किसानों के लिए खेती के साथ साथ स्थानीय उत्पादों और पर्यटकों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कार्शियांग।
From Karsiang, we now move over to Leh, and in this constantly changing world, the ancient practice of meditation has emerged as an important tool for modern wellness. What was once considered an esoteric spiritual practice has now been embraced by millions worldwide, backed by substantial scientific research showing its profound effects on both mental and physical health. Let us hear more on this from a Leh correspondent, Phunsok Wangmo.
Meditation in its various forms has been practiced for thousands of years across diverse cultures and traditions. In Ladakh, the ancient Buddhist traditional practice of meditation long back was followed only by few sections of the society called as the Tsamspas, meditation practitioner. But gradually, the practice of meditation becomes popular in general within all sections of the society. It has been more than three decades now that the laymen are also into this practice. Ladakh owns meditation centers across the region and is now heading towards becoming the hub for both yoga and meditation. Venerable Bhikkhu Sanghasena, the latest recipient of PM Yoga Award 2021-25 and the founder of Mahabodhi International Meditation Center, MIMC, spoke about Ladakh heading towards becoming the hub for both yoga and meditation.
Here in Ladakh, Ladakh is the land of yoga, land of meditation, and here more than three decades we have established the first international meditation center here, and we have been offering different meditation courses to all kinds of people, local people and foreign visitors, and also a lot of spiritual tourists, yoga, meditation tourists also come to Ladakh, and we are all working together to develop Ladakh as a very special place, spiritual and yoga capital of the world.
Meditation may be one of the most valuable investments one can make, and it costs nothing but time and intention. For Parikrama, this is Phunso Gwangmo from Leh Ladakh.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 8 wickets in the opening T20 International of the 5-match series in Visakhapatnam last night. India have taken a 1-0 lead in the 5-match series, chasing the target of 122 set by Sri Lanka. India achieved it in 14.4 overs. For India, Jemima Rodrigues scored unbeaten 69 runs off 44 balls. She was adjudged player of the match. For Sri Lanka, Kawwa Kavinindi and Inoka Ranavira took a wicket each. Earlier, Indian women won the toss and opted to bowl. Batting first, Sri Lanka scored 121 for 6 in the stipulated 20 overs. Vishmi Gunaratne, who scored 39 runs, was the highest scorer for Sri Lanka. And for India, Kranti Gaur, Deepti Sharma and N. Sri Charani claimed a wicket each. Led by Captain Harmanpreet Kaur, India playing 5 T20s against Sri Lanka as part of the Women's T20 World Cup preparations. And the next match of this T20 series will be played on 23rd December in Visakhapatnam, with the last three in Thiruvananthapuram. And moving on to some business news, riding the Santa rally on Dalal Street, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended the first trading day of the week on a bullish note. Both indices opened higher today and continued to move upward throughout the session. Buoyed by positive cues from Asian markets, the Sensex surged 638 points to close at 85,567, while the Nifty added 206 points to settle at 26,172. In the forex market, the rupee today depreciated by 36 paise to trade at 89 rupees and 65 paise against the US dollar a short while ago.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
On the 22nd of December 1901, Gurudev Rabindranath Tagore established the school of Brahmacharya Ashram for children of Shantiniketan, West Bengal. It is around this school that the structure of the unconventional and globally renowned Vishwa Bharati University has developed through love for education, dedication and careful planning. Rabindranath Tagore called the institution Vishwa Bharati, which means the communion of the world with India. In a conscious repudiation of the system introduced in India by the British rulers, Rabindranath initially sought to realize the intrinsic values of the ancient education in India. The school and its curriculum therefore signified a departure from the way the rest of the country viewed education and teaching.
Simplicity was the cardinal principle. Classes were held in open air, in the shade of trees, where human and nature entered into an immediate harmonious relationship. Teachers and students shared the single integral socio-cultural life. The curriculum had music, painting, dramatic performances, and other performative practices. Beyond the accepted limits of intellectual and academic pursuits, opportunities were created for invigorating and sustaining the manifold faculties of the human personality.
After independence, the institution was given the status of a central university in 1951 by an Act of the Parliament. It continues to empower the citizens of India and the world.
We also remember the revolutionary from across the seas, Taraknath Das, who died on 22nd of December 1958. A pioneering immigrant in the west coast of North America, he helped organize the Asian Indian immigrants in favor of the Indian independence movement.
Taraknath was born on the 15th of June 1884 in Kancharapara, Chobis Paraganas, West Bengal. While attending college in Calcutta, he was recruited into an anti-British secret society. By 1905, he gave up his studies and started spreading the revolutionary message. Wanted by police, he fled to Japan in 1905, disguised as a sadhu. And after the British ambassador requested his extradition, Das fled to the US and enrolled in the University of California, Berkeley, where he organized Indian immigrants towards Indian independence movement.
Das started in 1908 a monthly magazine called Free Hindustan to educate Indian immigrant population of British Columbia about the exploitative policies of the British Indian government. Later, he was also associated with Lala Hardayal of the Ghadar Party and by 1914, after several unsuccessful applications, became a US citizen, thus moving out of the reach of the British government.
He travelled to Germany on the eve of the World War I and became involved in securing funds for an armed insurrection in India. He took part in an unsuccessful German-Indian mission to destroy a British-controlled railway along the Suez Canal and also travelled to China and Japan to organise the Pan-Asiatic League and promote India's independence.
In 1917, Das returned to the USA to face the charge of conspiring to violate the Neutrality Act. He and other conspirators were convicted in the Hindu-German conspiracy case in San Francisco and Das was sentenced to 22 months in prison in Leavenworth, Kansas.
After serving his prison term, Das abandoned revolutionary activities. He completed his PhD from the School of Foreign Service in Georgetown University and spent the rest of his years teaching in the US and Europe. He died in December 1958 in New York.
आज प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई की पुण्यतिथि है। फिल्म दो आंखें बारह हाथ का प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम वसंत देसाई द्वारा ही संगीतबद्ध किया गया था। इस गीत को पंजाब सरकार ने सभी विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में शामिल कर लिया था। वर्ष 1943 में वी शांताराम अपनी फिल्म शकुंतला के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे थे। वी शांताराम ने फिल्म के संगीत के लिए वसंत देसाई को चुना। इस फिल्म ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनकी मुख्य फिल्में रहीं दो आंखें बारह हाथ, तीन बत्ती, चार रास्ता, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, तूफान और दिया आदि।
यस एंड जॉन ग्राहम मेलर पास्ड ऑन दिस डे इन 2002, नोन प्रोफेशनली एज जो स्ट्रामा। He was a British musician. He was the co-founder, lyricist, rhythm guitarist and lead vocalist of the punk rock band The Clash, formed in 1976. And The Clash's second studio album, Give Them Enough Rope, in 1978, reached number 2 on the UK charts. Soon after, they achieved success in the US. Let's listen in to his hit track, The Irish Rover.
For a grand city hall in New York. What a wonderful craft given rigged for an app. To know how the wild wind drove her. She shall discover a blast. She's 27 past, and I call her the Irish Rover.
आज स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर शिक्षाविद, बिहार के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक मौलाना मजहरुल हक की जयंती है। उन्होंने 1917 की महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और आज ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कनक लता बरुआ की जयंती है। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी। तब वे सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बावजूद गोहपुर पुलिस थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साहसिक कार्य का नेतृत्व किया, जिससे वे भारत की युवा शहीद और वीरांगनाओं में से एक बन गई।
Yes, and Samuel Barclay Beckett passed on this day. In 1989, he was an Irish playwright, poet, novelist, and literary critic. Writing in both English and French, his literary and theatrical works feature bleak, impersonal, and tragic comic episodes of life, coupled with black comedy and literary nonsense. Beckett is widely regarded as one of the most influential and important writers of the 20th century, credited with transforming modern theatre. As a major figure of Irish literature, he is best known for his tragic comedy play Waiting for Godot in 1953. For his foundational contribution to both literature and theatre, Beckett received the 1969 Nobel Prize in Literature for his writing, which is New Forms for the Novel and the Drama in the Destitution of Modern Man Acquires Its Elevation.
आज जन्मदिन है भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पट कथा लेखक वेणु नायर की। वे 1990 से टेलीविजन और फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं और वृत्त चित्र फिल्मों, मिनी सीरीज और फीचर फिल्मों सहित 100 से अधिक कार्यों का निर्माण कर चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में अपनी पहली फीचर फिल्म डेथ बॉय वाटर का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। इस फिल्म को का नाम था, जो हिंदी में नाम है अभिषेक, उसका नाम था जल समाधि। तो ये फिल्म समकालीन समाज में व्याप्त एक विघ्नकारी मुद्दे, अवांछित बुजुर्गों के साथ व्यवहार से संबंधित है। जल समाधि को विश्व भर के 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए चुना गया था। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
Yes, and Mary Ann Evans passed on this day in 1880. Known by her pen name George Eliot, she was an English novelist, poet and journalist, translator and one of the leading writers of the Victorian era. She wrote 7 novels, Adam Bede, The Mill on the Floss, Silas Marner, Romola, Felix Holt, The Radical, Middlemarch and Daniel Deronda. And like Charles Dickens and Thomas Hardy, she emerged from provincial England. Most of her works are set there. Her works are now known for their realism, psychological insight, sense of place and detailed depiction of the countryside.
आज साहित्यकार माधवी सरदेसाई की पुण्यतिथि है। वे कोंकणी साहित्यिक जनरल जाग की संपादक थी। वे मुख्य रूप से गोवा में कोंकणी भाषा में काम करती थी। माधवी सरदेसाई गोवा विश्वविद्यालय के कोंकणी विभाग की प्रमुख भी रही। वर्ष 2014 में माधवी सरदेसाई उन दिनों चर्चा में आई जब उन्हें कोंकणी में आलोचनात्मक लेख मंथन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। गांधी जी के जीवन पर आधारित अपनी पुस्तक एका विचाराची जीवित कथा के अनुवाद के लिए भी उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया।
श्रीनिवासा रामानुजन आयंगर वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1887। ही वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन हु वर्कड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। डिस्पाइट हैविंग ऑलमोस्ट नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन प्योर मैथमेटिक्स, ही मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देन कंसीडर्ड अनसॉल्वेबल। Is widely mentioned in popular culture. The Man Who Knew Infinity is a 2015 Hollywood film based on Kanigal's book of the same name based on his life, and British actor Dev Patel portrays Ramanujan in the movie.
जी हाँ, और उन्होंने खुद से गणित सीखा था और जीवन भर में गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन भी किया था।
Yes, and Morris and Robin Gibb were born on this day in 1949. They are twin brothers. They achieved global fame as member of the Bee Gees pop group. Let's listen in to a hit track of theirs. Yes, and Ralph Fiennes was born on this day. He's an English actor and director. Recognized for his work on stage and screen, he received numerous accolades.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.